الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دس مرتبہ ضرور شریف کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یہ مبارک مجلس جس کا تعلق قرآن مجید سے کیونکہ اس کی نسبت اور اس کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن یقیناً برکت اور رحمت کی کتاب ہے تو قرآن کی نسبت پر قائم ہونے والی یہ مجلس بھی رحمت اور برکت والی ہے. مزید یہ تو قرآن مجید کافی بھی یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. ابھی آپ ایک نظم سن رہے تھے اس میں آپ نے یہ بات سنی کہ ایک حافظ قرآن دس انسان کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا بلکہ وہ حدیث میں تھوڑی شرائط اور قید بھی ہے तो 10 आदमियों को ये जन्नत में ले जाने का जरिया बने। तो अब फजीलत डबल हो, एक तो कुरान की मजलिस और हिफ्ज़े कुरान की। और वो भी अल्लाह के घर में मस्जिद के अंदर। ये तीसरी बरकत शामिल हो। और आज जुमा की रात है, जिसको हदीस पाक के अंदर चमकदार और रोशन रात कहा गया। ये चौथी नस्बत और बरकत उसमें जमा हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन तमाम बरकतों से और अपने फजल से मजीद बरकतों और रहमतों से हमें और पूरी उम्मत को दुनिया और आखिरत में मालामाल फरमाए। कितना टाइम हुआ वो तो मुझे भी मालूम नहीं है। आपकी इस बस्ती से उलमाए किराम की, दीनदार लोगों की एक जमात पूरी सफ़र करके हमारे यहाँ डाभेल मदरसे में ये लोग तशरीफ लाए। मैंने उनसे पूछा कि इतना लंबा सफ़र किया, तो इन्होंने बतलाया कि हिफ्ज़े कुरान की मजलिस से इस नस्बत से हमने सफ़र किया। मैंने कहा मैं तो बहुत सस्ता मौलवी हूँ, 10 पैसे मिनट का टेलीफोन कर लेते तभी मैं दावत कबूल कर लेता हूँ, आपको इतना लंबा सफ़र गवारा करने की ज़रूरत नहीं। जिस वक्त ये दावत देने आए तो मैं सच्ची बात अल्लाह के घर में बैठ के कहता हूँ कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं आज आ सकूँ। मैं टालने में भी बहुत माहिर आदमी हूँ, सोचा था कि अभी तो कई महीने बाकी है, किसी सिफत से टाल देंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि जिस इखलास के साथ इन्होंने इतना लंबा सफर किया उस इखलास और तलब की बरकत से इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को अपनी रजा का जरिया बना दे, कबूल फरमा। फिर आपने प्रोग्राम भी सुने, बच्चों की किरात सुनी, नात सुनी। नात में आपने एक जुमला सुना होगा, एक शेर सुना। ये नात नज़म पढ़ी जाती, इसकी सिर्फ आवाज नहीं सुनी जाती, उसमें एक सबक होता है, मैसेज होता है, लेसन होता है, नसीहत होती है, वो भी ध्यान देने की चीज हुआ करती है। बहुत सारी बातें आपने नात में सुनी, एक बात ये भी सुनी, कयामत के मैदान में प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और आपके मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का भी अल्लाह इंतज़ाम फरमाए। ये बात आपने नाज शरीफ में सुनी। मेरे मुसलमान भाइयों, कयामत के दिन जब हर इंसान को मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसकी फिक्र होगी। ये जो हम अरबी में सुनते हैं नफसी नफसी, तो इसका सीधा साधा मीनिंग ये है कि मेरा क्या होगा, मुझे जन्नत होगी कि जहन्नम होगी, अजाब होगा कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह को कुछ कह सके। आज दुनिया के अंदर पुलिस के पास किसी का केस जाता है तो हम अपने गांव में ढूंढते हैं कि किसका पुलिस वालों से बहुत बनता है, तब उनको साथ ले जाओ, ये पुलिस वाले को जरा कह देंगे अपनी पहचान का है, काम आसान हो जाएगा, केस ढीला पड़ जाएगा। दूसरी शक्ल ये है कि जाकर के कुछ हदिया दे दो, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि रिश्वत दे दो, तो उससे भी काम आसान और हल्का हो जाता है। लेकिन दीनी भाइयों, कयामत के दिन का हाल ये होगा जो खुद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی، لاکھوں لگانے کی، پریشر اور دباؤ لانے کی किसी के पास हिम्मत नहीं होगी, किसी को इजाजत नहीं होगी। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे वही अल्लाह के सामने सिफारिश कर सकेगा। कयामत के दिन सबसे बड़ी जो सिफारिश चलेगी वो हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चलेगी। हुजूर अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह मेरे उम्मतियों को आप जन्नत में भेज दीजिए, सिफारिश करेंगे, लागवक लगाएंगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, विनंती करेंगे, दरख्वास्त करेंगे अल्लाह से। और हम में से हर मुसलमान ये चाहता है कि कयामत के दिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। चाहते हो ना? कौन चाहता है कि कयामत के दिन हुजूर के नूरानी हाथों और से कौसर का पानी पीना मिले? जरा हाथ उठाओ, कौन चाहता है? माशा तो एक हदीस में आपको सुनाता हूं, वादा करो कि अमल करेंगे कब तक? कहो मौत तक, इंशाअल्लाह। अभी तो मैंने अमल शुरू करवा दिया, आगे पाबंदी आपको करनी है। अल कौलुल बदी जो दुरूद पाक की एक किताब है, फजाइल आमाल में फजाइल दुरूद तो सुनते हो, अल्लाह तालीम हमें ध्यान से सुनने वाला बना रहे, तो उसमें अल कौलुल बदी के बहुत रेफरेंस आते, हवाले आते। तो अल कौलुल बदी के अंदर एक हदीस मौजूद है कि जो मुसलमान रोजाना सुबह में 10 मरतबा, शाम को 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कयामत के दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करेंगे, उसकी शफात करेंगे और शफात करके उसको जन्नत में ले जाएंगे। कितना आसान अमल है कि सुबह में 10 मरतबा दुरूद, शाम को 10 मरतबा दुरूद। इसीलिए अभी मैंने आपके पास 10 मरतबा दुरूद पढ़वाया। अब नियत कर लो कि कल सुबह से रोजाना सुबह शाम पूरी जिंदगी पाबंदी से इस हदीस पर अमल की नियत से 10 मरतबा दुरूद जरूर पढ़ेंगे। और सुबह शाम की जो तस्वीर है ना, उसके अलावा ये बात करता हूँ, यानी कि उसमें आप ज्वाइंट नियत कर लो। मुसलमानों कुरान क्या चीज है और हिफ्ज़े कुरान क्या चीज है। ये कुरान अल्लाह ताला की बात है। हम कहते हैं कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम। कलाम किसको कहते हैं? जिसको हम अपनी गुजराती में बात कहते हैं उसको अरबी में कलाम बोलते हैं। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। और अल्लाह ताला के लिए हमारा ईमान और अकीदा क्या है? इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है, हमेशा तक जिंदा रहेंगे और कभी अल्लाह को मौत आने वाली नहीं है। इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह हमेशा से जिंदा और हमेशा तक जिंदा रहेंगे, कभी अल्लाह ताला को मौत आने वाली नहीं है। इसको हम उर्दू अरबी में यूं भी कहते हैं कि अजल, अजली कलाम। तो जिस तरह अल्लाह हमेशा से है, इस तरह अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह की जो बात है, अल्लाह का जो कुरान है, वो भी अजली और हमेशा से। और ये कुरान सबसे पहले कहाँ था? अल्लाह ने उसको लोहे महफूज में रखा। लोहे महफूज एक जगह है, कहाँ है वो जगह? लोह कहते हैं प्लेट को, जिसको हम इंग्लिश में प्लेट कहते हैं, स्टील की प्लेट, आयरन की प्लेट, लोहे की प्लेट, जिसको उर्दू में तख्ता कहते हैं। ये प्लेट को अरबी के अंदर लोह कहते हैं। और महफूज मीनिंग सिक्योर, जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं हिफाजत, सलामती, यानी जो एकदम हिफाजत में होए, ऐसी एक प्लेट है, ऐसी एक तख्ती है, उसको कहा जाता है लोहे महफूज। ये लोहे महफूज कहाँ है? इसकी जगह मैं आपको सिर्फ समझाऊं, बता नहीं सकता। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, मक्का से शुरू हुआ सफर। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। अल्लाह ताला अपने बंदे को यानी हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात ले गए, मक्का से ले गए। सफर शुरू हुआ मक्का से, पहले ले गए पैलेस्टाइन, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस अल्लाह ले गए। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्जे से आजाद फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह ताला अर्द मुकद्दस फलस्तीन को आफियत और सलामती की दौलत से मालामाल फरमाए। तो अल्लाह अपने बंदे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का चले गए पैलेस्टाइन मस्जिद अक्सा। और सफर हो रहा है बुराक से होकर, बुराक एक जन्नती जानवर है, घोड़े से छोटा होता है, गधे से थोड़ा बड़ा होता है, घोड़े और गधे के बीच बीच के अंदर साइज में ये जानवर है। और कभी आपने गौर किया कि इसका नाम बुराक क्यों रखा? ये लफ्ज है अरबी में बरकुन से। बर्क कहते हैं चमकने वाली बिजली को, जो आसमान पे चमकती है, उसको अरबी में बरकुन कहते हैं। का बुराक को बुराक इसलिए कहते हैं कि जिस तरह बिजली चमकती है, एक सेकंड के अंदर आसमान से जमीन पे आती है, फिर जमीन से आसमान पे जाती है, और वो जब चमकती है तो पूरे आसमान के अंदर चमक चमक नूर पैदा कर देती है। अल्लाह ताला ने इस बुराक के अंदर ऐसी ताकत रखी है जो बिजली के अंदर है। बिजली की तरह ये चमकता है, ये रोशन है, और बिजली की तरह एकदम तेज रफ्तार पूरी स्पीड के साथ चलता है। इतनी स्पीड का कोई एरोप्लेन नहीं हो सकता, कोई रॉकेट नहीं हो सकता, कोई मिसाइल नहीं हो सकता, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं हो सकता, कोई स्पेस शटल नहीं हो सकती जितनी स्पीड अल्लाह ताला ने बुराक के अंदर रखी है। किसी शायर ने कहा, चली जो बुराक तो पीछे रही हवा, चली जो बुराक तो पीछे रही हवा, बलबल उला बिकमारी। यानी हवा की स्पीड भी बुराक के पीछे हो जाए। अल्लाह ने बुराक में इतनी स्पीड रखी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से चले पहले आसमान पर, फिर वहां से चले दूसरे आसमान पर, फिर वहां से चले तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर, छठे पर, सातवें के ऊपर, सात आसमान पर पहुंचे। बुराक है, जिब्राइल है, तीन है, अल्लाह के नबी है, जिब्राइल है, बुराक है, सफर हो रहा है। लेकिन जब सातवें आसमान के ऊपर पहुंचे तो वहां जाने के बाद क्या हुआ कि एक बेर का दरख्त है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फरमाया कि इन्द सिदरतिल मुंतहा, इन्द सिदरतिल मुंतहा, इन्दहा जन्नतुल मअवा। ये बेर का जो दरख्त है वो लास्ट बॉर्डर है, मुंतहा जिसको कहते हैं, लास्ट बॉर्डर आखिरी हद, उसके आगे कोई मखलूक जा ही नहीं सकती, फरिश्ता भी नहीं जा सकता और कोई इंसान भी नहीं जा सकता। ये आखिरी बॉर्डर है, इसीलिए उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। वहां जाके बुराक भी रुक गया, जिब्राइल भी रुक गए, दोनों रुक गए। और फिर जिब्राइल ने कहा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप आगे तशरीफ ले जाइए। हुजूर ने पूछा कि जिब्राइल, तुम मुझको मक्का से लाए, मस्जिद अक्सा ले गए, सातों आसमान पे ले गए, जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, बैते मामूर दिखलाया, दज्जाल दिखाया, जहन्नम का दारोगा दिखलाया, सब दिखलाया, लेकिन तुमने अभी तक जो है यहां के साथ क्यों छोड़ दिया? तो जिब्राइल क्या कह रहे, पहुंचे जब सिदरा पर तो जिब्राइल ये कहकर रुके, पहुंचे जब सिदरा पर तो जिब्राइल ये कहकर रुके, हस्त सोजा ईत जल्ली मन्नतानम पर जदन। शेर मेरे पीर मुर्शिद हजरत अकबर मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। का हुजूर सवाल कर रहे हैं जिब्राइल अमीन को, जिब्राइल क्यों यहां से साथ छोड़ रहे हो? तो जिब्राइल ने क्या जवाब दिया, इसके आगे अगर जिब्राइल भी जाए तो जिब्राइल भी जल करके राख बन जाए, मैं नहीं जा सकता इससे आगे। अब आगे क्या, कैसे सफर हुआ? बुराक तो यहां सिदरतुल मुंतहा पर रुक गई। एक हरे रंग का तकिया आया, मुस्नद आई, रफरफ आई, जैसे ये तख्त आपने लगाया है बैठने का, ऐसा एक ग्रीन रंग का, हरे रंग का तख्त रफरफ ऊपर की तरफ से आया, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठ गए, सवार हो गए। और वो हरे रंग का मुस्नद, वो रफरफ उड़ने लगा, उसकी स्पीड कितनी अल्लाह जाने उसकी स्पीड कितनी, और वो अल्लाह के यहां से आया था इसलिए यकीनन उसकी स्पीड भी बहुत भारी होगी। हुजूर उसके ऊपर उड़ के तशरीफ ले जा रहे, एक जगह आई कि जहां कलम चलने की आवाज आ रही, कलम मीनिंग पेन चलने की आवाज आ रही। आप सोचे कि भाई ये पेन से चलने की आवाज वो कैसी आवाज, तो कभी आप बर्तन खरीदने के लिए दुकान पर गए होंगे तो बर्तन खरीद के आप दुकान वालों से कहते हैं नाम लिख दो, तो वो दुकान वाला क्या करेगा, एक लाइट का बटन दबाएगा और उसके हाथ में एक कलम होगी, वो कलम से बर्तन पर लिखना चालू करेगा, तो जब बर्तन पर लिखेगा तो आवाज निकलेगी। ऐसी, इसे समझाने के लिए मैंने मिसाल दी, ऐसी आवाज कलम के चलने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। और वो कलम कैसी थी, हुजूर ने उसकी जियारत की, दीदार किया उस कलम का, उस पेन का। अल्लाह ताला ने उस पर कलम की कुरान में कसम खाई, इरशाद फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून वल कलम वमा यस्तुरून। अल्लाह ताला कुरान ने कलम की कसम खा रहे, और कलम के जरिए जो लिखा जाता है अल्लाह उसकी भी कुरान में कसम खा रहे हैं। मेरे दीनी भाइयों, ये कलम की कसम खा करके अल्लाह ने ये बात समझाई कि ईमान वालों तुम भी लिखना पढ़ना सीखो, ये सिखाया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही है। अनपढ़ होना, अंगूठा छाप होना, जाहिल होना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कुरान से कसम खाई नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम की कसम। इस कलम को अपने पास रखा कर, मुसलमान के जेब में पैसे नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन जेब में कलम और डायरी होनी चाहिए, और कलम से लिखना और पढ़ना भी सीखो, कैसे लिखे कैसे पढ़े ये भी मुसलमान को सीखना चाहिए। उसी को हम कहते हैं इल्म, उसी को कहते हैं एजुकेशन, उसी को कहते ज्ञान, उसी को कहते शिक्षण, और ये मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। तो हुजूर ने कलम से चलने की आवाज सुनी, पूछा अब किसको पूछते वहां पर, तो उस जगह का नाम था मकामे सरीफुल अकलाम, कलम के चलने की जगह। आपको अल्लाह की तरफ से ये बात दिल में बतलाई गई कि ये जहां कलम चल रही है, ये कलम चलने की आवाज आ रही है, ये जगह का नाम है लोहे महफूज, ये है लोहे महफूज। और ये जो कलम चल रहा है, ये तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक की, जिन्नात की, जानवर की, परिंदों की, आसमान की, सितारों की, हर चीज की ये तकदीर लिख रहे हैं, ये तकदीर लिखने वाले कलम चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि ये लोहे महफूज सातों आसमान के भी ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के भी ऊपर, जन्नत के भी ऊपर, जहन्नम से भी आगे, अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब में उस लोहे महफूज में सबसे पहले अल्लाह ने अपना कलाम, अपने कुरान को वहां पर रखा, सबसे पहले वहां उसकी हिफाजत होगी। तो ये हिफ्ज का सिलसिला कहां से चल रहा है वो मैं आपको बतलाता हूं, इसकी हिफाजत का सिलसिला लोहे महफूज से शुरू हुआ। फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उस वक्त के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको वहां से ट्रांसफर किया, मुंतकिल किया, और मुंतकिल करके लाए कहां पर, ये जो आसमान हमको दिखता है पहला, वहाँ अल्लाह ताला लाए, और उसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये जो शबे कदर, लैलतुल कदर की बात आती है तो उसमें कुरान की दूसरी हिफाजत के लोहे महफूज से ये कुरान लाया गया और उसको हिफाजत के साथ अल्लाह ताला ने रख दिया। ये पहले आसमान के ऊपर जो हमको नजर आता है, और लोहे महफूज से पहले आसमान तक पूरा कुरान एक साथ आया। फिर ये हुआ कि जब मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने वहां से पहले आसमान से कुरान उतारना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा सबसे पहले 5 आयतें उतारी, थोड़ा थोड़ा उतारना शुरू किया, और 22.5 साल में ये पूरा कुरान अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में उतारा। तो पूरा इतिहास में समझा रहा हूँ आपको, हिस्ट्री सुना रहा हूँ, तारीख सुना रहा हूँ, कुरान की हिफ्ज की, के सबसे पहला हिफ्ज उसका लोहे महफूज में, फिर पहले आसमान में, फिर वहां से हजरत जिब्राइल के पास। हजरत जिब्राइल वहां से कुरान लेते और लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वन्नजमि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى। तीसरे नंबर पर हजरत जिब्राइल के पास, और फिर आया ये कुरान मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में, और आका के कान के जरिए सीने मुबारक में अल्लाह ने इस कुरान को हिफाजत से रख दिया। अब जब ये कुरान आता था तो हुजूर उसको साथ साथ पढ़ते थे याद करने के लिए, तो अल्लाह ने क्या फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिह, साथ साथ में मत पढ़ो, अभी आप सुनो कुरान को ध्यान से। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, आपके सीने में कुरान को याद करा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चौथे नंबर पर ये कुरान का हिफ्ज हुआ हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से, और हुजूर के दिल में, हुजूर के हार्ट में ये कुरान हिफ्ज करवा दिया। किसने करवाया? अल्लाह ने करवाया। किसने करवाया? अल्लाह ने करवाया। इसीलिए कि खुद अल्लाह फरमा रहे सनुकरिहुका फला तंसा, सनुकरिहुका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। हम ये कुरान आपके सीने में जमाने के बाद आपकी जुबान से पढ़वाएंगे और आप उस कुरान को भूल नहीं पाओगे। कैसा अजीब ये हिफ्ज का सिलसिला चला। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा फरमाते, और आपकी जानकारी के लिए बतला कि सबसे पहले 5 आयत आई वो थी सूरह अलक की 5 आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वहां से कुरान उतरना शुरू हुआ। और आज ये बात सुन लो कि सबसे आखिरी आयत जो अल्लाह ने मदीने पाक में उतारी, बहुत सारे मुफस्सिरीन की राय में ये है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीह इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। ये आखिरी आयत जो अल्लाह ने उतारी, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीह इलल्लाह। तो पहली आयत जो उतारी गई वो इकरा, आखिरी आयत जो उतारी गई वत्तकू यौमन तुरजऊन फीह इलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा करते और जमा करने के बाद उनको कुरान सुनाते, सहाबा उसको याद कर लेते, हड्डी पर लिख लेते, चमड़े पर लिख लेते, पत्ते पर लिख लेते, जो भी ना उस पर लिख लेते। अल्लाह का एहसान मानो आज हमारे लिए कागज बहुत आसान है, ये खुदा का एहसान है। सहाबा के लिए कागज इतना आसान नहीं था, वो तो हड्डियों पर, चमड़े पर, लकड़े पर, पत्ते पर, कपड़े पर कुरान लिख लिया करते। और अजीब अजीब आशिक होते हैं अल्लाह ताला के, खुदा मुझे आपको कुरान के इश्क का फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह मुझे आपको कुरान से इश्क का फरमाए, कैसा इश्क का फरमाए, ऐसा इश्क अता फरमाए। अभी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक औरत बिचारी 30 साल तक, कोई मामूली बात, 30 साल लगाए वुजू के साथ उसने धागे और सुई के जरिए कपड़े के ऊपर पूरा पुराने मजीद मुकम्मल लिखा, जिसको भरत काम कहते, कढ़ाई काम कहते, उसके जरिए से वुजू के साथ 30 साल तक मेहनत करके पूरा कुरान मजीद इसने मुकम्मल लिखा। कैसा इश्क होगा कुरान मजीद के साथ, अल्लाह मुझे आपको कुरान से ऐसा इश्क अता फरमा। और कुरान से इश्क कैसा हो कि आदमी कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बने। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उनको कुरान पढ़ने की करामत अता फरमाई थी। असर के बाद कुरान शुरू करते, मगरिब की अजान से पहले कुरान पूरा कर देते थे, असर के बाद कुरान पढ़ना शुरू करते, मगरिब की अजान से पहले कुरान पूरा 30 पारे पढ़ लेते थे। तो दिल्ली में लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत अच्छा एक दिन पूरी पब्लिक जमा हो जाओ। तो दिल्ली वाले जमा हो गए, जमुना नदी के किनारे पर स्पेशल प्रोग्राम रखा। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने असर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पढ़ना शुरू किया और अभी सूरज गुरूब हो रहा है और फुलाउज़ रब्बिन नास के ऊपर पहुंच रहे हैं। खुल्लम खुल्ला चमत्कार मौजूदा पूरे मजमे को कुरान पढ़ के सुना दिया, असर और मगरिब के बीच के अंदर। ये है कुरान का मौजूदा, कुरान का चमत्कार जो आज तक दुनिया के अंदर सलामत और मौजूद है। तो अल्लाह मुझे आपको कुरान से इश्क अता फरमाए, कैसा इश्क हो। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में थे। उनके बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि कल कयामत के दिन अल्लाह जन्नत में भेजेंगे, तो हदीस में आता है कि हर जन्नती को कम से कम 72 हूर अल्लाह अता फरमाएंगे। तो कहा जब ये 72 हूरें आएगी तो मैं उन हूरों से कहूंगा कि तुम सब मेरी तरफ गोल गोल बैठ जाओ, मैं बीच में बैठता हूं, चारों तरफ तुम बैठ जाओ, मैं बीच में बैठता हूं। और उसके बाद जन्नत के उन हूरों से कहूंगा मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूं, तुम कुरान सुनना शुरू करो। और मैं उन हूरों से कहूंगा खुदाए पाक की कसम मुझे कुरान पढ़ने में और कुरान सुनाने में इतना मजा आता है कि तुम हूरों के साथ सोने में भी मुझे वो मजा नहीं आता। अल्लाह मुझे आपको कुरान का ऐसा इश्क अता फरमा दे। जब कुरान का ऐसा इश्क होगा ना तो फिर ये होगा जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुमिल्लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तर्तीला। रात में खड़ा रहना और कुरान सुनना, जब कुरान से इश्क होगा तो आसान हो जाएगा, वरना कुरान से इश्क न हो तो आदमी जो है ना पहली तरावी में 10 जगह पर मालूम करता है कहाँ जल्दी तरावी पूरी होती है, 10 जगह मालूम करें कहाँ जल्दी तरावी पूरी होती है, अब वहाँ जाएंगे। और जहाँ तरावी देर से ख़त्म हुई कि वहाँ हाफिज साहब को और उनके सामने को दो को बाकी रखो, बाकी मस्जिद जिन्नात के है तो वहाँ तरावी पढ़े। अब इंसान तो कम से कम नहीं पढ़ेंगे। मेरे मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत पैदा करो, कुरान सुनना, कुरान पढ़ना, सही कुरान सुनना, सही कुरान पढ़ना, ये है कुरान के इश्क और मोहब्बत की बात। तो हुजूर साहबा को जमा फरमा दे, साहबा को कुरान सुना देते, लिख लिया जाता, याद कर लिया जाता, फिर कुरान की हिफाजत का मुबारक सिलसिला चला और आज तक ये मुबारक सिलसिला दुनिया में चल रहा है। माशाल्लाह ये मासूम मासूम बच्चे कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल कर रहे हैं। 1400 साल से ज्यादा का जमाना हो गया लेकिन आज तक इस कुरान के अंदर एक लफ्ज एक हर्फ कोई आगे पीछे नहीं कर सका, और हमारा ईमान है कि कयामत तक कोई इधर उधर नहीं कर सकता। देखो ना, इन लोगों की दिल कितना छोटा है। किसी डॉक्टर साहब से पूछा, इन लोग कहते हैं कि आदमी की ये जो मुट्ठी होती है ना, इतना आदमी का दिल होता है। इंसान के दिल की साइज नापनी हो तो मुट्ठी बंद कर ले, बस इतना आदमी का दिल होता है। इतना सा दिल और उसका ताल्लुक दिमाग से। अब देखो 6666 के करीब आयतें इतने से दिल में, छोटे से दिमाग में आ जाना, ये कुरान करीम का मौजूदा और चमत्कार है। उसी को खुदा ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लम अल-कुरआन। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है कि उस अल्लाह ने कुरान तुम्हें सिखलाया। अगर खुदा की मेहरबानी न होती तो कोई आदमी इस कुरान को सीख नहीं सकता था। इसलिए तेरे बच्चे में हम लोग बैठे हुए, हमें से किसी की भी जबान अरबी नहीं है, किसी की भी भाषा, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज अरबी नहीं है। हमारी मदर लैंग्वेज, मातृभाषा गुजराती है, लेकिन उसके बावजूद भी अदर लैंग्वेज में, दूसरी जबान में, दूसरी भाषा में, पूरा अरबी में कुरान पढ़े और उसको दिल में याद कर ले, ये कुरान मजीद का खुल्लम खुल्ला चमत्कार है। और ये अल्लाह की रहमत है। और रहमान अल्लम अल-कुरआन, ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह कुरान याद कराते, अल्लाह सिखला देते, अल्लाह ताला उसको समझा देते, ये खुदा की रहमत का करिश्मा। और फिर ये कुरान की चैन चलेगी, कयामत तक ये कुरान का हिफ्ज दुनिया में चलता रहेगा। और याद रखो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान के हिफ्ज की तौफीक अता करता। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। हमारे बच्चे हाफिज बनते, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन वो कुरान के हाफिज नहीं बन सकते। अभी वो आप नजम में सुन रहे थे, चार यारों के तुफेल में, तो चार यार का मीनिंग समझे, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ہم یہ چاروں کو ایمان والا مانتے ہیں، تمام انسانوں میں افضل مانتے ہیں، ان کو نبیوں کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے طفیل میں ہم کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی. اسی لیے جو لوگ ان چار صحابی کا اکرام نہیں کرتے، یا پہلے والے تین کا اکرام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ نے قرآن کے حفظ سے معروف رکھا ہے، وہ قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے. تو ہمارے بچے قرآن کے حافظ بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. افریقن ملکوں میں ایک ملک ہے بوتسوانا، ہمارے استاد اور مشرق حضرت اقدس شیخ العزیز مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے ساتھ ہم ایک مرتبہ بوتسوانا گئے، دوسرا سفر تھا اس ملک کا. اچانک افریقہ کے علماء آئے، ایک جگہ مدرسے کے اندر کچھ بچے حافظ ہوئے، اور ایک بہت اچھے محبت رکھنے والے مفتی صاحب آ گئے کہ ہمارے بچے کا حفظ ہوا ہے تو دو دن کے لیے آپ لوگ ساؤتھ افریقہ آ جاؤ اس کی مجلس کے بعد. پروگرام بن گیا تو جمعہ کے اندر میرا بیان وہاں گیبرون کی مسجد میں طے تھا، تو سارا قافلہ بائی کار افریقہ جانے نکلا، اور مجھے اس مفتی صاحب کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ جمعہ کا بیان کر کے شام کے جہاز سے آپ کو افریقہ پہنچنا ہے. ہم شام کی فلائٹ سے گیبرون سے نکلے، جونس کا گزرے، جب ایئرپورٹ کے اوپر اترے تو امیگریشن آفیسر میری پاسپورٹ دیکھ رہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ویزا لگی بوتسوانا سے، اور ابھی کل ویزا لگی. تو وہ تعجب میں کہہ رہی تھی یہ کیسے ہو گیا، تم انڈین ہو، انڈین پاسپورٹ والے ہو، یہاں تمہاری ویزا لگ گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ قرآن کی کرامت ہے، انگریزی میں اس کو سمجھا کہ یہ قرآن کا چمتکار ہے کہ اس میں قانون کے خلاف ویزا بھی لگ جائے. تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ کیا میننگ آپ کو مجھے کہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ ہمارے مفتی فاروق صاحب میننگ ہے، یہ آپ کے افریقہ کے رہنے والے، ان کی پاسپورٹ افریقن ہے، یہ افریقن نیشنلٹی والے، یہاں کے سٹیزن ہے، یہاں کے شہری ہے. ان کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. تو کہا حافظ قرآن کا میننگ کیا؟ تو میں نے کہا یہ قرآن ہے نا جس میں 6,666 ورسی آیتیں، 6,500، یہ ان کے چھوٹے سے بچے نے اپنے دماغ میں یاد کر لی، اس کو ہمارے یہاں حافظ قرآن دیتے. تو وہ امیگریشن آفیسر ایئرپورٹ پر میری بات سن رہا ہے دھیان سے، اور سنا اس نے کہ 6,500 آیت ایک 8-9 سال کے بچے نے اپنے دماغ میں یاد کر لی. تو ایسا حیران ہو گیا کہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور کرسی سے کھڑے ہو کر کے ایک بڑے آفیسر کو بلا کے لائے، اور بڑے آفیسر کو بلا کے لا کے کہتا ہے ان کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ 6,500 آیت ایک 8-9 سال کے بچے نے میمورائز کر لی، یاد کر لی، حفظ کر لی، اور اس کے فنکشن میں یہ لوگ یہاں دو دن کے لیے آ رہے ہیں. وہ حیران رہ گیا، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ ایسا پوسیبل ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اس دنیا کے اندر ایک سچی کتاب قرآن ہے، آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اس کو 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 1-2 مہینے میں پورے 30 پارے کے حافظ بن جاتے، پورے 30 پارے. تو بہت تعجب میں پڑا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو موقع دیکھ کر دعوت دی، آپ بھی اس پروگرام میں تشریف لے آئیے تاکہ آپ سنیں، ابھی تو ہماری زبان سے سن رہے ہو، آپ پروگرام میں آ کے دیکھو بچے کی عمر، اور پورا قرآن آپ سن لو تو آپ کو یقین ہو جائے. मेरे मुसलमान भाइयों, आज पूरी दुनिया की अकल हैरान है। ये जितने भी जो कुछ हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है, इनकी समझ में नहीं आता कि इनके पास है क्या चीज। आज पूरी दुनिया हैरान है कि इतना बड़ा कुरान और 1400 साल हो गए, आज तक उसने कोई एक आयत बदल नहीं सका। ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, कोई बातिल आगे से पीछे से उस पर हमला नहीं कर सकता। एक जमाना था जब हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज लोग आए तो इन्होंने कुरान को खत्म करने की कोशिश की। हजारों की तादाद में कम से कम 2 लाख या उससे ज्यादा कुरान मार्केट में से खरीदे, खरीद के उसको आग लगाए या पानी में डुबो दिए, जला के खत्म कर दिए। इनका नापाक प्लान ये था कि किसी तरह ये कुरान दुनिया में से खत्म हो जाए। तो किसी ने उनको कहा कि तुम ये कुरान मार्केट में से ले लेकर के जला रहे हो, सब बात सही, लेकिन उस कुरान को कैसे जलाओगे जो मासूम मासूम बच्चों के सीनों के अंदर है, उसको तुम कैसे जला सकोगे। वो तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी दी और वो किसी हाल के अंदर तुम उसको खत्म नहीं कर सकते। हिफ्ज़ का सिलसिला इंशाल्लाह कयामत तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह कुरान को बाकी रखेंगे, फिर ये चलेगा आखिरत के अंदर। और आखिरत के बारे में आता है हदीस पाक के अंदर कि कुरान के हाफिज को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, इकरा वरतकी, ए हाफिज कुरान तू जन्नत में जा और कुरान पढ़ना शुरू कर, कुरान पढ़ और जन्नत के दर्जात पर ऊपर चढ़ता चला जा। जन्नत में अलग अलग दर्जे हैं। आपने सुना कि दिल्ली के अंदर 20 मंजिल की बिल्डिंग है, बंबई में 25 माले की बिल्डिंग है, 35 माले की बिल्डिंग है, दुबई में बुर्जुल खलीफा 100 माले की बिल्डिंग है, एफिल टावर हो या एक जो है टोरंटो का टावर हो, का इतने माल की ऊंचाई का है। आप जानते हो जन्नत कितनी ऊंचाई वाली है और जन्नत से कितनी मार है, जन्नत के कितने दर्जात है। अल्लाह हाफिज कुरान को कल कयामत के दिन इरशाद फरमाएंगे, जा जन्नत में चला जा और कुरान पढ़, एक आयत पढ़ एक दर्जा चढ़ जा, दूसरी आयत पढ़ दूसरा दर्जा चढ़, तीसरी आयत पढ़ तीसरा दर्जा पढ़, पूरा कुरान पढ़, जहाँ तेरा कुरान मुकम्मल हो जाए वहां तेरा मकान होगा, वहां तो इत्मीनान से रहेगा। और कुरान में 6,500 आयतें, क्या मतलब हुआ, कम से कम जन्नत के दर्जात 6,500 है, इतने दर्जात है और हाफिज कुरान सबसे ऊंचे वाले दर्जे के ऊपर रहेगा। इसलिए मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कहो
इंशाल्लाह।
अभी जो आपने नजम में ये बात सुनी थी ना कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में ले जाएगा, तो कम से कम अपने घर के अंदर कितने आदमी है उनकी गिनती करो और हर 10 के ऊपर एक बच्चे को हाफिज बनाओ, ये कम से कम दर्जा है ना। कि घर में जितने आदमी है, मर्द औरत जवान बूढ़े बच्चे, उनकी गिनती करो और गिनती करके हर 10 में से एक को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि तमाम लोगों की मगफिरत हो जाए। करोगे ये काम? ये तो बहुत छोटा है कि हर 10 पर एक को हाफिज बनाओ, यूं कहो घर के हर हर बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हर बच्चे को हाफिज कुरान। जब ये चीज होगी कि उम्मत में हिफ्ज कुरान का आम माहौल हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत जो है दुनिया से कुरान को मिटा नहीं सकती। इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना
لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً یہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. حافظ تو اللہ ہے, لیکن ان بچوں کو اللہ نے اپنا نام دے دیا, اپنا لقب دے دیا کہ جاؤ تم قرآن کے حافظ بن گئے, اب تم کو حافظ کہا جائے گا. یہ حافظ صاحب اس مبارک سلسلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ امت کے ہر ہر بستی میں, ہر ہر گاؤں میں حفظ قرآن کے مبارک سلسلے کو چلا دے, اور جو سلسلے اللہ اس کو مضبوط فرما دے. یہ ہوا دوسرے نمبر کا کام. پہلا کام ناظرہ تھا, دوسرا کام حفظ قرآن تھا. اب آگے کا کام ہے جو اصل کام ہے اور اہم ترین کام ہے, کہ قرآن کریم کا میننگ, اس کا معنی, اس کا مطلب, اس کی تفسیر, اس کی کامنٹری, اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا, یہ ہے تیسرا درجہ. اور اس کے لیے بچوں کو ہمیں عالم بنانا ہوگا, دارالعلوم میں بھیجنا ہوگا, عربی پڑھانا ہوگا, حدیث مسئلے مسائل تفسیر پڑھانی ہوگی, تو قرآن کا مین سمجھ کے اندر آئے گا. اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, کیا عمل کرنا ہے, کن باتوں سے بچنا ہے, یہ چیز اس وقت کے اوپر معلوم ہوگی. اب آگے اس کا نمبر آتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں اس مجلس کے اختتام کے اوپر, دشمنوں نے بہت کوشش کی اس قرآن کے الفاظ کو بدلنے اور ختم کرنے, بہت کوشش کی, لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. قرآن کے الفاظ کو آج تک نہیں بدل سکے, بہت محنت کی, عجیب عجیب محنت کی لوگوں نے, کامیاب نہیں ہو سکے. تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے الفاظ کو تو بدل نہیں سکتے, تو چلو قرآن کے مین کو بدل ڈالیں, قرآن کے معنی کو بدل ڈالیں, قرآن کے مفہوم کو بدل ڈالیں. اس وقت کے اوپر دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قرآن کے معنی اور مین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. یوں کہو تحریف لفظی کر نہیں سکے تو اب تحریف معنی کے چکر میں پڑے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی تین طلاق نہیں ہوگی, اور جو ہے ایک سے زیادہ شادی نہیں ہوگی, چار نکاح صحیح نہیں ہے, یہ حلالہ نہیں ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کی آئی ہوئی بات ہے, اور یہ قرآن مجید کے اندر معنوی تحریف کی کوشش ہے کہ قرآن کے الفاظ کو نہیں بدل سکے. تو اب ان لوگوں کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کے مینین کو بدل دے رہے, معنی کو بدل دے رہے, مفہوم کو بدل دے رہے, اس کے مطلب کو بدل دے رہے. اس لیے جیسے امت نے قرآن کے الفاظ کی اللہ کی توفیق سے حفاظت کی, اب امت کو کوشش کرنی ہے قرآن کے معنی اور مطلب کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس لیے بچوں کو عالم قرآن بناؤ, جیسے حافظ قرآن بن گئے, اب ان کو عالم قرآن بناؤ. اور میں علماء کرام سے درخواست کروں گا, ہر ہر بستی میں قرآن کی تفسیر کی مجلس شروع کرو, ہر بستی میں قرآن کی تفسیر سناؤ. یہ بہت ضروری ہے تاکہ قرآن میں معنوی تحریف نہ ہونے پائے, قرآن کے معنی کو بدلا نہ جا سکے. اس کے لیے بستی بستی میں تفسیر کے حلقے کی بھی ضرورت ہے. جب یہ چیز عام ہوگی, لوگ قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کا میننگ سمجھیں گے, قرآن کا مطلب سمجھیں گے, تو پھر کوئی آ کے ان کو یوں کہے گا کہ بھائی تین طلاق تو قرآن میں ہے ہی نہیں, تو وہ کھڑا ہو کے کہے گا کون کہتا ہے میرے اللہ کے قرآن میں تین طلاق کہتا ہے. کوئی آ کے ان کو کہے گا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی, وہ کہے گا میرے اللہ نے قرآن میں چار شادی کی اجازت دی ہے, قرآن کے اندر موجود. تو ان لوگوں کی جو ایک ناپاک سازش ہے, اللہ تعالیٰ اس سازش کو انشاءاللہ ناکام فرمائے. इसलिए आगे वाला अब काम हमें करना है। माशाल्लाह नाजेरा कुरान हमारी यहाँ बस्ती बस्ती में हो रहा है, गांव गांव में, महल्ले महल्ले में हो रहा है, हिफ्ज़े कुरान का सिलसिला भी चल रहा है। अब आगे वाला कदम है कि कुरान मजीद के मानी और तफसीर को आम किया जाए, ताकि लफ्ज की हिफाजत हुई, अब उसके माना की भी हिफाजत हो, और लफ्जी मानवी तारीफ से कुरान की हिफाजत हो, और ये अल्लाह का कुरान दुनिया के अंदर सलामत और बाकी रहे। अल्लाह ताला उम्मत को इसकी तौफीक और सआदत अता करना, अल्लाह उम्मत को इसकी तरफ ध्यान और तवज्जो देने वाला बना दे। बहुत मुबारक सिलसिला है। देखो आजकल जो स्कूल की तालीम, कॉलेज हाई स्कूल की तालीम है, उस तालीम के अंदर अगर इन बच्चों के पास हिफ्ज़े कुरान है, कुरान की तालीम भी है, तो इंशाअल्लाह वहाँ की गलत तालीम के जहर से इनकी हिफाजत होगी, वहाँ गलत अकीदों से उनकी हिफाजत होगी, गलत अखलाक से इनकी हिफाजत होगी। वरना आजकल वहाँ का माहौल ईमान को बर्बाद करने वाला, अखलाक को बर्बाद करने वाला। तो ये बच्चे हाफिज बनकर कुरान पढ़ के कुरान समझ के स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ के गंदे माहौल से उनकी हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस मुबारक सिलसिले को बेइंतहा कबूल फरमाए, अपनी रजा और खुशनुदी का जरिया बनाए। मुझे बहुत खुशी है इस बात के ऊपर कि आपकी इस बस्ती के अंदर ये हिफ्ज़े कुरान का मुबारक सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ताला इसको बे इंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह उसको तरक्की से मालामाल फरमाए, और आज इतने बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ मुकम्मल किया, अल्लाह ताला इनकी तकमील को भी कबूल फरमाए, और अल्लाह आगे आइंदा इनको आलिम कुरान बना दे, और अल्लाह ताला इनको कया पूरी ज़िंदगी कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। और आप हजरात और मेरी हाजिरी जो महज कुरान की नस्बत से हुई, अल्लाह ताला इस हाजिरी को अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कभी पढ़ लो दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بدن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بدن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بدن، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اے اللہ یا ذل جلال و اکرام، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ مشائخین سلامزہ متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا میں ایمان والوں کے حال میں رحم فرما دیجیے، اے اللہ پوری دنیا میں ایمان والوں پر رحم فرما دیجیے، پوری دنیا میں ایمان والوں پر رحم فرما دیجیے، ایمان والوں کی جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو آپ کی رضا والی زندگی عطا فرما، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ یہاں جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے اسے بے انتہا قبول فرما. اے اللہ یہ جتنے بچوں نے حفظ کی تکمیل کی، اے اللہ پوری زندگی ان کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن کے ان کے سینوں میں جمع دیجیے. اے اللہ ان کو عالم قرآن بنا دیجیے. اے اللہ اس قرآن کے حفظ کو ان بچوں کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں، ان کی بستی والوں کے حق میں، خاندان والوں کے حق میں، دنیا اور آخرت میں برکت کا ذریعہ بنا دیجیے، رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. قرآن کے حفظ پر جو وعدے ہیں، اے اللہ ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے حال میں رحم فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر مساجد کی، مدارس کی، مقاصد کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں اہل ایمان اے اللہ بہت پریشان ہیں، اے اللہ بہت پریشان ہیں، اے بے سہاروں کے سہارے اللہ اپنے پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما، امت کی جان مال کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، عصمت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما، جو جیلوں میں ان کو رہائی عطا فرما، جو جس مصیبت میں اس کو نجات عطا فرما، مرنے میں شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر اس نے خاتمہ عطا فرما، مدینے پاک میں موت عطا فرما، مکی میں دفن ہونا نصیب فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے. اے اللہ قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، محشر کی ہولناکی سے، آپ کے غضب اور غصے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں برکت عطا فرما، ہمارے عقیدوں کو، عبادت کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو اسلامی بنا دیجیے. اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس مجمع میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، اس بستی والوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماؤ، خصوصی برکتیں نازل فرماؤ، اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرماؤ. ہمارے ملک میں اے اللہ امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، عافیت اور سلامتی عطا فرماؤ. اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ایک آپ ہمارے ہیں، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے، فتنہ اور مختون بننے سے حفاظت فرمائیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ضرور سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. آمین آمین آمین. صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
صبح 4:30 بجے سے 1 منٹ بھی لیٹا نہیں.